सभी उड़ती कला में उड़ रहे हैं। अभी उड़ती कला में उड़ाया गया ना, उड़ती कला का क्लास था ना, फिर उड़ती कला का क्लास सुनते रहे या उड़ते भी रहे? हाँ ठीक ठीक बोलना। उड़ती कला में उड़ते भी रहे या उड़ती कला की बातें सुनते रहे और खुश होते रहे? हाँ उड़ते रहे, पक्की बात। भाई क्या बोलते? सुनते भी रहे और उड़ते भी रहे, फिर नीचे तो नहीं आए ना। हाँ उड़ के कहाँ जाएंगे? जो उड़ते रहेंगे वो कहाँ पहुंचेंगे? धरती से ऊपर चले जाएंगे ना। तो आप सब उड़ते 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 धरती से ऊपर चले गए या फिर वापस आ गए? हाँ फिर वापस आ गए। उड़ना और फिर वापस आना, हाँ ये ड्रिल है अपनी, कि अभी अभी ऊपर जाएं और अभी अभी ऊपर रहते हुए नीचे आए। ऐसे नहीं नीचे आ जाएं, परंतु ऊपर रहते हुए जब एक बार अच्छे स्थान पे चले जाओ तो वो यादें भूलेंगी थोड़ी। तो जब उड़ती कला में उड़ते रहे, बातें सुनते सुनते तो खुशी होती है, लेकिन हमारा सुनने का यही भाव होता है। बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया है ना, कि सुनते रहो, जो सुनते जाओ उसको अपने अंदर में अभ्यास करते रहो, अनुभव करते रहो। अगर इसी प्रकार हम करते रहते हैं तो उसका लाभ हमारे पास स्थायी बन सकता है। अगर केवल सुनने मात्र सुनते हैं, खुशी तो जरूर होती है, परंतु अनुभव करना, क्योंकि अनुभव में आई हुई बात भूलेंगी नहीं। अभ्यास की हुई, जिस समय हम सुन रहे हैं उस समय उसका प्रवाह होता है, प्रवाह होता है ना। तो जब हम प्रवाह में हैं और उसी प्रवाह में जब उसका अनुभव कर लेते हैं तो वो अपने पास कुछ समय तक, ऐसे ही कहेंगे, कुछ समय तक वो लहर बनी रहेगी, प्रवाह बना रहेगा। और जितना हम उस प्रवाह में रहेंगे उतना जो भी उसमें सुनते जाएंगे उसका हमें आनंद आता रहेगा। तो अभी उड़ती कला से तो उड़ गए, फिर अब क्या सुनेंगे? हाँ सारे हमारे सुनने का सार ही ये है कि हम अपनी देह को, देह की दुनिया को भूलते जाए और अपने घर, अपने बाप को केवल याद करते रहें। इतना ही नहीं, परंतु क्या आगे आएगा, उनके साथ साथ स्वयं को अनुभव करें। अनुभव ही बहुत बड़ी प्राप्ति है। जो बात अनुभव में आ जाती है अर्थात प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति माना ही अनुभव। जब अनुभव में आ जाता है तो फिर वो प्राप्ति सदा कायम रहती, सदा याद रहती, बार बार वो प्राप्ति अनुभव और भी कराती रहती है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को और बातें भी, हमारा अनुभव बढ़ता जाए अर्थात बाप के साथ का अनुभव निरंतर बनता जाए। तो जब बाप के साथ का अनुभव निरंतर रहेगा तो उसके अंदर खुशी भी बढ़ती जाएंगी और बाप हमें कुछ ना कुछ देता ही रहेगा ना। बच्चा जब बाप के साथ होता है तो बाप से उनको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, और ये बाप सर्वशक्तिवान बाप ऐसे कहेंगे ना, हाँ? जब हम उनके साथ हैं तो हमें क्या क्या प्राप्तियां होती है। हम कहते हैं हम बाप के अधिकारी बच्चे हैं, तो अधिकारी बच्चे होने के नाते जितना हम साथ का अनुभव करेंगे उतना हमें अधिकार प्राप्त होता जा रहा है, ये हमें अनुभव मिलेगा। और वो अधिकार क्या प्राप्त होगा? बाप के शक्तियों का, बाप के गुणों का, और ज्ञान का खजाना तो मिलता ही रहता है जो हम सुनते भी रहते हैं, लेकिन अनुभव में गुण और शक्तियां जब आ जाती है तो हम स्वयं को भी शक्तिशाली अथवा मास्टर शक्तिवान अनुभव करते हुए उसी नशे में रहेंगे। अभी की विषय कौन सी है? हाँ? निश्चय और नशा, साथ में निशाना। यूं तो कहें जब उड़ती कला में उड़ गए तो निश्चय तो पहली बात है, एकदम जब आते हैं तब निश्चय कराया जाता है। अब यहाँ तो सब निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे बैठे हैं, जब निश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो निश्चय बुद्धि का प्रमाण क्या है? हम 100% निश्चय बुद्धि है, स्वयं को हम ये रियलाइज करें। क्योंकि सभा के अंदर तो सब निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे बैठे, ऐसे तो कहेंगे ना, तभी तो बाबा के पास आए हैं, नहीं तो बाप दादा से मिलने क्यों आते? जब निश्चय है, कौन सा निश्चय है? हाँ, कौन सा निश्चय है? हम किसके पास आए हैं? बाप दादा केवल कहेंगे, लेकिन बाप दादा कौन, उसकी क्या महिमा, उसकी कितनी महानता। वो महानता जितनी जितनी हम उसको पहचानते जाते, बाबा कहते हैं ना, मैं जो हूं और जैसा हूं, मुझे क्या बोलते हैं बाबा, कोई विरला ही पहचानते हैं। परंतु हम बच्चे तो कहेंगे, जब हम बाप के बच्चे हैं तो हम बच्चों ने बाप को पहचाना है, और बाप जो है जैसा है, कौन है और कैसा है, अगर एक एक से पूछा जाए तो बाप की इतनी महानताएं हैं जो हर एक अलग अलग बताए तो भी कम है। क्योंकि जब सर्वशक्तिवान बाप है, विश्व का रचयिता पिता है, सारे विश्व नई विश्व की रचना करने वाला है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिससे ये सारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष कितनी सृष्टि बड़ी है, परंतु उनका बीज होने के नाते बीज रूप कितना छोटा है और वृक्ष कितना बड़ा है। वृक्ष को देख करके, वृक्ष में जितने फल, जितने प्रकार के फल फूल जो कुछ भी है, वृक्ष को देखते हुए जो वृक्ष का रचयिता है, बीज रूप है, उनकी महिमा गाई जाती है कि ऐसा वृक्ष, ऐसी रचना किसने की। तो फिर मन के अंदर ये आता है कि सारी विश्व का, सारी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप ऐसा हमारा बाप, ठीक है ना, निश्चय ऐसा है, निश्चय ऐसा। फिर बताया नहीं, जब कहती है बाप दादा तो केवल बाप दादा नहीं कहो, जब उनकी महिमा जितनी है, कोई न कोई महिमा का शब्द जब हमारे मन के अंदर आएगा तो वो खुशी रहेंगी, वो नशा रहेगा, क्योंकि निश्चय और नशा, नशे का आधार निश्चय पर है, ठीक है ना। तो हम सब बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, हमें अपने आप से पूछना होगा, पूछते हो ना अपने आप से, क्योंकि पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को हमने कितना पढ़ा है, कितनी उसकी हमें पूरी पूरी जानकारी है, अर्थात इस पढ़ाई की जो प्राप्ति है वो हमने कितनी की है, ये तो हर एक को अपने आप से पूछना पड़ता है ना। तो ये तो कहे ना, बाप जो है जैसा है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई विरला ही जानता है, परंतु हम बच्चे कहते हैं बाबा हमने आपको पूरा पूरा जाना है। कैसे हम कह सकते हैं हमने पूरा पूरा जाना है, क्योंकि बाप ने हमें जो स्वयं की नॉलेज दी, स्वयं की भी पहचान मिली ना कि मैं कौन हूं, जब हमने स्वयं को पहचाना तो स्वयं की पहचान के साथ साथ हम बाप को भी यथारत रूप में पहचान सकते हैं। क्यों? परम आत्मा को पहचानने वाली, परम आत्मा को जानने वाले कौन है? परम आत्मा को कौन जान सकता है? जो उनके बच्चे हम आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को आत्मा निश्चय किया है, वो निश्चय बुद्धि ही बाप को पहचान सकते हैं कि मुझ आत्मा का बाप, परम पिता, परम आत्मा कौन है, कैसा है, क्या उनकी शक्ति है, कब वो आता है, किस रूप में आता है, क्या आकर के करता है, ये सारी बातें जानकारी में आती हैं। तो ये सारी जानकारी उसको ही पूरी पूरी हो सकती है जिन्होंने बाप के द्वारा स्वयं की पहचान पा करके और स्वयं को पहचान, स्वयं को निश्चय किया है, वो ही बाबा के बच्चे बाप को यथार्थ रूप में जान सकते हैं। ठीक है बात? ठीक है। तो सभी ने स्वयं को पहचाना है, स्वयं के ऊपर भी पूरा पूरा निश्चय है, हाँ निश्चय बुद्धि है ना। किन किन बातों का निश्चय? तो पहला निश्चय बाप के ऊपर, पहला निश्चय स्वयं के ऊपर, क्या कहेंगे? हाँ अनुभव से बताना, ज्ञान से नहीं, पर अनुभव से बताना। हाँ पहला निश्चय स्वयं पे, अच्छा सबका यही जवाब, अनुभव से बोलना। पहले पहले जब हम आए और फिर ये नॉलेज लेने का भी हमें उमंग रहा अथवा रुचि आई, हमने समझा ये ज्ञान ले, वो भी किस आधार पर? हाँ कहेंगे तो वैसे दोनों बातें आपस में अरस परस आती हैं, लेकिन फिर भी हमें ये निश्चय होता है, कम से कम इतनी जानकारी होती है कि भगवान पढ़ाते हैं, भगवान आया हुआ है, तभी तो हमें दिल होती है कि नहीं हम और उसकी आगे बातें सुने। और ये पढ़ाई अथवा जो भी हमें समझानी मिलती है वो बाप देता है, भगवान देता है, तो जो जो वो बात हमें बताते जाएंगे उसके ऊपर हमें पूरा पूरा विश्वास बनता जाएगा, ऐसे कहेंगे ना। और उन विश्वास के अंदर कहा जाता है पहला विश्वास, जो बाबा ने बताया बाप के ऊपर, तो पहला विश्वास चाहिए, नहीं तो पढ़ाई में हमारा ध्यान ही नहीं लगेगा। परंतु बाप को यथार्थ रीति से जाने, उसके लिए पहला विश्वास, पहला निश्चय हमें स्वयं का रखना है कि मैं कौन हूँ। आज की मुरली में भी था ना, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, ये जो बाबा की विशेषता थी उसमें भी यही बात आई ना कि मैं पन जो देह का भान है, भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं, मान शान आदि आदि, ये सब मैंपन में आती हैं। जब ये हम जान लेते हैं कि मैं कौन, तो क्या क्या बातें आएंगी मैं कौन की जानकारी में। पहली बात तो ये कहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। चलो ये निश्चय तो हमें बैठ गया, परंतु इस निश्चय के साथ साथ मुझे नशा रहे, तो इस निश्चय का नशा हमको कैसे रहेगा? उसके अंदर कौन सी बातें निश्चय की आती हैं? मैं अविनाशी आत्मा हूँ, और बोलो। देखो आप जब बोलते हो ना, तो देखो वो बोलने से आपको खुशी इमर्ज होती है, तो जैसे जैसे जो जो बोलो उसमें खुशी इमर्ज हो, तो समझो हम राइट बोल रहे हैं। अर्जुन थोड़ी सी उसमें जानकारी है, अर्जुन और खुशी इमर्ज होनी चाहिए, तो और ढूंढो कि बाबा ने हमको मेरा लक्ष्य क्या बताया है, मेरी पहचान क्या क्या दी है। तो पहली तो ये बात ठीक है कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, निराकारी आत्मा हूँ, और फिर दूसरा उसके आगे कौन सी आत्मा हूँ, कितनी विशेष आत्मा हूँ, वो मेरी विशेषताएं क्या क्या आती है, जिससे मेरी खुशी बढ़ती जाए, जिससे मैं स्वयं को भी आत्मा को भी अच्छी रीत से पहचानती जाऊं। हाँ, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, वो बाबा के गुण बताएंगे। अच्छा, और आप ये याद करो कि दिन प्रतिदिन, कहा जाता है ना, दिन प्रतिदिन ज्ञान हमारा गुह्य होता जाता है। तो पहली स्टेज में तो हमें इतनी नॉलेज मिली, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। फिर जैसे वो हमें निश्चय हुआ, ये हमने महसूस किया, फिर आगे बढ़े तो आगे और क्या हमें बताया गया कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, जिससे मेरी खुशी और इमर्ज होती है और मुझे इन बातों को धारण करने की रुचि बढ़ती जाती है। हाँ, अधिकारी आत्माओं, बोलो। जो पीछे वाले बोले ना, तो उठ के बोले तो दिखाई पड़े कौन बोल रहा है। हाँ, आधार मूर्त और उधार मूर्त हूँ। अच्छा, और बोलो, आप क्या बोलती थी? सूर्यवंशी आत्मा हूँ, और बोलो। माताएं भाई बोलो, अभी एक एक। अच्छा, वरदानी तक पहुंच गए, ठीक है। हाँ, मैं चंद्रवंशी हूँ, एकदम से चंद्रवंशी में पहुंच गए क्या, कमाल कर देते हो। सूर्यवंशी बोलो। अच्छा, और बोलो भाई, एक एक। हाँ, कोटों में कौ आत्मा हूँ, ऐसी ऐसी बातें बताओ। हाँ, और बोलो। देव आत्मा हूँ, और बोलो। हाँ, पूर्वज आत्मा हूँ। चलो, इतना तो स्वमान याद आ गया ना। हाँ, अभी इसी खुशी में रहना, इस स्वमान में रहते कि मैं वो ही आत्मा, अनादि आत्मा तो हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ, परंतु फिर मुझे अपने को वही स्वरूप बनाना है। तो इस निश्चय के अंदर जब हम ये निश्चय करते हैं कि मैं वही आत्मा हूँ, वही में क्या क्या बातें आती है, वही में पहली बात आती है कि मैं वही शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि मैं आत्मा परम पिता परम आत्मा की संतान हूँ, अविनाशी पिता की संतान, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, परम पवित्र पिता की संतान, मैं पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, फिर आएगा मैं परम धाम की निवासी आत्मा हूँ। जब वहां की निवासी आत्मा हूं और हम अपने को परम धाम निवासी आत्मा अनुभव करेंगे तो क्या होगा, इस संसार में रहते हुए हम उपराम रहेंगे, न्यारे रहेंगे। क्योंकि ये बातें जितनी जितनी हमें निश्चय बुद्धि होंगे उतना उतना हमारे जीवन के कर्मों में सहज अनुभव होगा। और ये निश्चय बाबा इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती हुआ ना, तो निश्चय बुद्धि का प्रमाण है क्या, प्रमाण हुआ, अभी पूछना जवाब ठीक से देना हा? निश्चय बुद्धि विजयंती, तो मैं निश्चय बुद्धि हूँ। चलो मुझे यही निश्चय है कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, किसने बोला ना, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ। जब ये मुझे निश्चय पक्का है तो निश्चय बुद्धि विजयंती। अब अपने आप से पूछें कि निश्चय बुद्धि विजयंती मेरी हर बात में विजय होती जा रही है। और पहली बात विजय की, पहली बात कौन सी, कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरी अपने विकारों पर, अपने पुराने संस्कारों पर विजय होती जाए। ये हमें अपने आप को देखना है। निश्चय तो बहुत सहज बात है, लेकिन निश्चय, और हम सबको निश्चय है, लेकिन हमें अपने को इस बात को देखना है कि जब गाया हुआ है निश्चय बुद्धि विजयंती, मैं अपन को निश्चय बुद्धि बाबा का बच्चा कहलाता हूँ, तो मुझे हर बात में विजयी बन के ही रहना है। इसको कहा जाएगा निश्चय का नशा। क्योंकि नशा जब तक हमें नहीं है, नशा माना दृढ़ निश्चय, क्योंकि नशा हमें तब रहता है जब हमें निश्चय बहुत पक्का है, वो बात हमारे से भूलती नहीं, वो बात हमारे से छूटेंगी नहीं। अभी तक तो आप थोड़ा ऐसे कहेंगे ना कि हम अपने को याद दिलाते हैं, जब योग में बैठते हैं तो याद दिलाना पड़ता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन निश्चय बुद्धि का प्रमाण हमें क्या मिलेगा, कि हम चलते फिरते हमें ये बात याद रहेंगी। भले पहली स्टेज में हमें याद दिलाना पड़ता है अपने को, लेकिन हम उसमें ऐसे लग जाएंगे, उस बात को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये अभ्यास हमारा पक्का हो जाए। पक्का हो जाए अर्थात चलते फिरते हमारे बुद्धि में ये बात चलती रहे, मैं आत्मा शरीर के द्वारा करा रहा हूं, मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूं, इस शरीर में प्रवेश करके कर्म क्षेत्र पर अपना पाठ बजाने आई हूं। ये बात हमको घड़ी घड़ी चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते याद आती रहे, तब तो हम कहेंगे कि हाँ हमें निश्चय है। केवल निश्चय ही नहीं, परंतु उस निश्चय का हमें नशा है। जिस बात का नशा होता है वो अपने आप स्वाभाविक नेचुरल रूप में याद आती रहेंगी, उसका कर्म हमारे से नेचुरल होता जाएगा। अभी तो हम बाबा के बच्चे कई समय से, भले कोई कोई नए भी होंगे, लेकिन नए भी एक वर्ष डेढ़ वर्ष के ही होंगे ना, उससे कम वाले तो होंगे ही नहीं। तो जब हम इतने समय से ये बातें सुनते आए हैं, हमें निश्चय है, तो हमें बार बार अपने से पूछना चाहिए कि निश्चय बुद्धि विजयंती, ये बात हमारे बुद्धि के अंदर बार बार याद आती रहे कि मैं इस शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाने के लिए आया। जब ये बात हमें इतने तक निश्चय में है, बार बार याद है, तभी समझो हमारे कर्मों में कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है। कोई भी कर्म विकार के वश, भले मोटे मोटे विकार छूट गए, लेकिन मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं, प्रकाश स्वरूप हूं, प्रकाश के अंदर जब प्रकाश है तो अंधेरा नहीं रहता है। तो जब मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं तो अंधेरा छोटा छोटा विकार भी, छोटी छोटी बात भी, तो अज्ञानी कहा जाएगा ना, ज्ञान के अनुकूल नहीं माना जाएगा ना। तो जब मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं, अर्थ ही सूक्ष्म हूं, सूक्ष्म जो होता है वो स्थूल को बड़ा अच्छी रीत से समझ सकता है, स्थूल सूक्ष्म को इतना नहीं समझ पाएगा, लेकिन सूक्ष्म स्थूल को अच्छी रीत जान सकता है। देखो आत्मा कितनी सूक्ष्म है, शरीर कितना बड़ा है, लेकिन शक्ति आत्मा की काम करती है। इतने बड़े शरीर, इतनी बड़ी कर्म इंद्रियों को चलाने वाली इतनी सूक्ष्म छोटी सी आत्मा है, तो शक्तिशाली आत्मा है। और जब हमें ये पहचान मिल गई, मैंने जान लिया, पहचान लिया, निश्चय भी कर लिया कि मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं, तो मेरे आगे कोई अंधेरा नहीं रहना चाहिए, अज्ञान नहीं रहना चाहिए, कोई विकार नहीं आना चाहिए। ये हमारे अंदर अगर वो चिंतन चलता रहता है, इसको कहा जाएगा दृढ़ निश्चय। निश्चय हम सबको है, लेकिन निश्चय की जितनी दृढ़ता हमारे में रहेगी उतनी हमारी विजय होती जाएगी। हम सबको ये अनुभव है, जब हम ज्ञान में आते हैं हमें बताया जाता है कि योगी जीवन के ये चार नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन, अन्न की शुद्धि, संग की शुद्धि और दैवी गुणों की धारणा। तो हमारा फॉरेन अटेंशन जाता है ना, तो हम ये निश्चय हो जाता है तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, कितनी भी मुश्किलें आएंगी, कुछ भी बात होंगी, लेकिन हमें पक्का निश्चय है कि भगवान ने हमें कहा है हमें अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। तो ये निश्चय का बल हमें वो शक्ति देता है, कितनी भी मुश्किलों में हमें पार कर देता है और हम विजय पा करके आगे चलते हैं। इसी प्रकार से जो भी हमारे में और छोटी छोटी बातें भी है, शुरू में मोटी मोटी बातें तो हमारे से छूट जाती, मोटे विकार छूट जाते हैं, मोटी बुराइयां हमारे से निकल जाती है, पर सूक्ष्म जो छोटी छोटी समय समय पर हो जाती हैं, उसके लिए अगर घड़ी घड़ी हम अपने को ये याद दिलाते रहें कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो परम धाम निवासी आत्मा हूं, मैं परम पवित्र पिता की संतान हूं, भले बात वो ही शुरू की है लेकिन यही बात, ये बीज है ना हमारा, कहा जाता है ना, वो देखा है ना दैवी गुरु का गुलदस्ता, देखा है जब उसका दैवी गुरु का झाड़ पिक्चर में हम दिखाते हैं तो उसका बीज क्या दिखाते हैं, बीज यही दिखाते हैं कि आत्म अभिमानी, आत्म अभिमान इसका बीज है। तो जितना बीज हम गहरा डालेंगे उतना उसका झाड़ सुतह निकलता जाएगा। तो ये दैवी गुणों का झाड़ हमारे अंदर पैदा होता जाएगा, अर्थात हर कर्म में हमारी दिव्यता रहे, चाहे बोल में, चाहे दृष्टि में, चाहे कर्म में हमारी दिव्यता बनी रहे, उसका उसकी जड़ है, उसका बीज है ये आत्म अभिमानी भव। अभी आत्म अभिमानी भव बाबा ने तो हम बच्चों को वरदान दे दिया, ठीक है ना, और हम बच्चों ने भी उस बात को समझ लिया और निश्चय कर लिया, लेकिन निश्चय का प्रमाण हम अपनी जीवन में देखते रहें कि वो प्रमाण हमें मिलता जाता है। जितना हमें निश्चय का प्रमाण मिलेगा अपने जीवन में उतना ही हमें नशा रहेगा, नशा हमें सदा रहे, कभी नशा है कभी नहीं। उसका कारण यही है कि जो हमारे जीवन में दिव्यता रहे, जो हमारी दृष्टि और वृत्ति, जैसे सुना ना कल था ये, कि बाबा ने आज भी दादी जी ने बताया मुरली के अंदर कि पहले अपन को आत्मा समझो और फिर जिसको भी देखो दृष्टि कौन सी बनी रहे, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो ये भाई भाई की दृष्टि बनी रहे, ये कैसे बनेगी, जब हम स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। तो हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति के अंदर, हमारे हर कर्म में ये दिव्यता बनी रहे, इसके लिए हमें बार बार अपने अंदर ये याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, तो मैं आत्मा हूँ, शरीर से न्यारी, शरीर से अपन को अलग मान करके, शरीर भी मैंने ही धारण किया है। जब मैंने ही शरीर धारण किया है तो उन शरीर से मुझे कौन से कर्म कराने हैं, किस प्रकार से कर्म कराना है, ये बाबा ने हम बच्चों को पूरी पूरी नॉलेज दे दी है। तो निश्चय का प्रमाण जितना जितना हम अपने जीवन के कर्मों में देखते जाएंगे उतना हमें नशा रहेगा। नहीं तो नशा नहीं रहता है तो फिर नशे के सिवाय विजय भी तो नहीं होगी ना। योद्धे जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो इस नशे से जाते हैं ना, अंदर में उनको रहता है ना कि हम देश के लिए लड़ेंगे, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, हमें विजय पानी है, किस भी रीति से विजय हमें पानी है, ये उनको अंदर में वो निश्चय रहता है, दृढ़ता रहती है। और उसी दृढ़ता के आधार पर उन्हों में वो शक्ति आती है लड़ने की। नहीं तो कोई ऐसे युद्ध के मैदान में जा सकता, परंतु अंदर में वो जोश होने के कारण उसी नशे से जाते हैं तो फिर वो इतनी है। कौन से जन्म का अधिकार है, हाँ, ब्राह्मण जन्म का, इस ईश्वरी जन्म का अधिकार है, जो हमारी सदा विजय हुई पड़ी। बाबा तो कहती है ये निश्चय करो कि हमारी विजय हुई पड़ी है। जब ये निश्चय हम करते हैं कि हमारी विजय हुई पड़ी है तो हमारे अंदर एक दृढ़ता रहती है। दृढ़ता भी एक बहुत बड़ा बल है, जिस दृढ़ता के बल से हम अपने पर जो भी, जिस बात में हम अपने को कमजोर समझते हैं उस बात पर हम पूरा पूरा अटेंशन रखते हैं और उसमें विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। लेकिन तब कर लेते हैं जब हमें ये नशा है। तो निश्चय और निश्चय के साथ हमें पूरा नशा रहे, लेकिन नशा रहेगा तब जब जो हम निश्चय करते हैं उस निश्चय को हम कर्मों में लाते जाएं। जितना हम कर्म से अपन को वो सफलता देखते हैं तो हमारे अंदर नशा बनता है और वो नशा फिर हमारा कायम रहता है। ऐसे नहीं केवल ऐसे ही नशा है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बहुत ऊंचा नशा चढ़ जाता है, चाहे हमारे अंदर वो योग्यता हो या न हो, परंतु वो नशा ऐसा चढ़ा देंगे, कर्म में नहीं केवल कहने मात्र। तो हमें तो केवल कहने मात्र नहीं परंतु कर्म में हमें देखना है, जितनी जितनी हम कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे कितने पवित्र, कितने शुद्ध, भगवान के गुणों को वर्णन करते और हम अपने आप को देखते जाएं, तो फिर हमें ये उसकी, हम उसको बार बार अपने से लगाएं तो जरूर है उसकी हमको सफलता मिल ही जाएगी। इसी प्रकार से जैसे हमें स्वयं का निश्चय और उस पर बार बार ध्यान देना पड़ता है, ऐसे कौन सी बातें बाबा ने हम बच्चों को बताई हैं, जिन बातों का निश्चय हमें जरूरी है, जिस निश्चय के आधार पर ही हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हमें और भी जल्दी से सफलता मिलती जाए, हम और जल्दी उसमें विजय पाते जाएं, उसके लिए बाबा ने हमें दूसरी बात बताई है। कौन सी, पहली बात तो आत्मा की, दूसरी बात बाप की, ठीक है, बाप कौन है, हमें पढ़ाने वाला कौन है, उसकी पूरी महानताएं आप अपने से, बाबा कहते हैं ना बच्चे अपने से बातें करो, ये हमें सदा याद रहे। कभी कभी कोई कहते हैं ना कि याद भूल जाती है, कहते हैं ना अभी भी कहीं कहते हैं या योग में बैठते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ संकल्प आते हैं। अब ये जो आता है उसके लिए बाबा ने बड़ी सहज विधि बताई है। कौन सी सहज विधि? जब हम बच्चे ये मानते हैं कि हमें निश्चय है बाप के ऊपर, क्या निश्चय है बाप के ऊपर कि बाप सर्वशक्तिवान भगवान है, ये कहेंगे ना, कहने में तो ये आ गया, भले हम भगवान को बाप कहते हैं, बात ये हो गई है कि बाबा ने हम बच्चों को बड़ा सरल मार्ग करके बताया है, बड़ा सहज करके बताया है। भक्ति मार्ग में, अज्ञान में भगवान कहेंगे तो उनके अंदर बड़ी ऊंची भावनाएं आ जाएंगी, और ज्ञान में बाबा कहते हैं बच्चे भगवान नहीं कहो, भगवान कहने से दूरी का अनुभव होता है, क्योंकि भगवान तो पता नहीं कहाँ है। जब हमें भगवान मिल गया और तो वो मेरा कौन है, वो मेरा बाप है, तो बाप कहो। लेकिन बात मुश्किल क्या हो जाती है, बाबा ने हम बच्चों को सहज अनुभव कराने के लिए कहा बाप है, और बच्चे बाप समझ करके फिर क्या करते हैं, अलबेले नटखट हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैंने तो तुम बच्चों को सहज करके भगवान भगवान दूर दूर, उसके लिए बड़ी तपस्या करो, अनेक जन्म योग लगाओ, मैंने तुमको सहज करके दिया। लेकिन सहज का फिर बच्चे ये फायदा कर देते हैं, भगवान तो मेरा बाप है ना, बाप है, आप ही हमको कर देगा, चलो कुछ भी मेरे से हो गया ना, बाप है ना, हम आप ही बाप को मना लेंगे। पर ये नहीं उस समय सोचते हैं कि बाप है भगवान है, भगवान बाप है तो हर बात का उसके पास कायदा है, ऐसे नहीं हम उसके बच्चे हैं तो हम जो भी करें हमें माफ कर देगा, वो बात उस समय हमारे से भूल जाती है। इसलिए हम अपने अंदर में घड़ी घड़ी स्वयं को ये याद दिलाए मेरा बाप कौन, बाप की जितनी महानताएं हैं देखो अपने अंदर में याद आती है, कितनी महानताएं बाप की याद आती है। सर्वशक्तिवान तो कह दिया, लेकिन और क्या क्या बाबा के कर्तव्य है, और क्या क्या बाबा से मुझे प्राप्ति हुई है, बाबा ने क्या क्या हमको दिया है, देखो हमें कितनी याद आती है। और वो कितनी बातें हैं बाबा की, उसमें सारा दिन तो क्या, रोज रोज याद करते रहो, आपको नई नई बात याद, क्योंकि बाबा ने कितना अथाह ज्ञान दे दिया है, इतने ज्ञान रतन दिए हैं जो आप कितना भी उसको गिनती करो तो भी कम हो जाएंगे। वो अगर हम अपने चिंतन में चलाते रहें तो व्यर्थ आएगा, चिंतन फ्री होगा जिसमें व्यर्थ आवे, परंतु हम, बाबा ने हमें कहा है बच्चे बार बार याद करो, और हम समय से याद करते हैं, और वो भी जब इधर उधर के कामों से थोड़ा फुर्सत पाते हैं तभी याद करने को याद करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं मुझे याद करो, मुझे तो हर समय याद करते रहो, जब हर समय याद करो तभी तुम्हें हर समय प्राप्ति का अनुभव होता रहे, क्योंकि बाप के पास इतना खजाना है, शक्तियां भी कितनी अथाह है, या बाप की शक्ति कितनी शक्तिशाली है, उस शक्ति को लेने के लिए भी तो मुझे आत्मा को शक्तिशाली बनना पड़े, तो मैं आत्मा शक्तिशाली कैसे बनेंगी, जितनी मेरे में शुद्धता आएंगी, जितना मैं पवित्र बनती जाएंगी, जितना मेरा मन बुद्धि शुद्ध रहेगा, तब तो मैं बाप के शक्ति को धारण कर सकेंगी। तो मन बुद्धि मेरा शुद्ध बनता जाए उसके लिए जितनी मैं बाप की महानताएं याद करती रहेंगी, उतनी महानताएं केवल याद ही करेंगे तो भी मेरा मन बुद्धि याद करने से, बाप के महानताओं को याद करने से मन बुद्धि शुद्ध होता जाएगा, तो हमारे कर्मों में भी शुद्धि आती जाएगी। इसको कहा जाएगा कि बाप का निश्चय है और निश्चय के साथ वो हमें नशा रहे। नशा हमें तब ही रह सकता है जब हम बाप के महानताओं को अनुभव करते जाएंगे, बाप से प्राप्ति का अनुभव करते जाएंगे, तब तो हमारे अंदर उसका नशा रहेगा। अगर हमारे अंदर बाप से प्राप्ति का इतना अनुभव नहीं है, चलो भगवान है मेरा बाप, लेकिन उसका मेरे को प्रमाण, मेरे को उनसे क्या प्राप्ति हुई? केवल इतना ही कहें कि मुझे ज्ञान मिला, पर जो ज्ञान मिला, क्या क्या ज्ञान मिला फिर उसको वर्णन करो, तो उसमें तीसरी बात आती है। तीसरी बात कौन सी मुख्य आती है जो हमें जीवन में बहुत मदद करती है? हाँ, कौन सी बात? बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो, कौन सी? हाँ, ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा पर निश्चय, अर्थात ये जो सृष्टि चक्र का बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उस पर भी अगर हमें निश्चय है, निश्चय है, लेकिन बताया ना, निश्चय का प्रमाण क्या हुआ? हाँ, निश्चय का प्रमाण कि वो बात हम अपने कर्मों में लाते रहें और उसी से हम विजय पाते ही जाए। तो बाबा ने ये ड्रामा की बात हमें बहुत अच्छी दी है कि हर कर्म के अंदर हम ड्रामा को याद रखें। ड्रामा के अंदर जो कुछ बना हुआ है, समझो कभी कोई बात हमको अच्छी नहीं लगती है तो फिर मन डिस्टर्ब हो जाता है ना, फिर अनेक प्रकार की ख्यालात चलती है ना, पर हमारा कुछ उसमें और व्यर्थ ख्याल न चले तो फिर बाबा क्या बोलते हैं, ड्रामा में ये बना हुआ है, कल अब पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी हो रहा, अब जो बना हुआ है, हुआ था और अब हो रहा है, उसमें हम व्यर्थ चिंतन करके क्या करेंगे? हम उसको फिर बदल नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया। वैसे कहते हैं ना बाबा, अब बताते हैं जो हो गया ऐसे समझो, जो हो गया वो अच्छा, जो होगा वो उससे और अच्छा, लेकिन ये अच्छा है हम समझें, ये तब समझ सकते हैं जब हमें ये निश्चय है कि ड्रामा अनादि बना हुआ है, उसके अंदर जो जो पार्ट है वो पार्ट चलता जाता है और हम उसको साखी होकर के देखते रहे, पार्ट भी बजाएं और साखी भी रहे, डबल काम। केवल पाठ बजाए इतना ही नहीं, ड्रामा की नॉलेज हमें डबल काम करा देती है कि हम पाठ भी बजाते हैं और पाठ बजाने के साथ साथ हम उसको साक्षी होकर के भी देखते हैं, क्योंकि बाबा ने ये नॉलेज दी कि ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, अनादि और अविनाशी है। जैसे मैं आत्मा अनादि और अविनाशी हूँ, वैसे ये ड्रामा भी अनादि अविनाशी है, ये खेल चलता रहता है, उस खेल के अंदर मैं भी एक खिलाड़ी हूँ जो अपना पार्ट बजाए करता हूँ। तो अगर हम अपने को इस खेल के अंदर पार्टदारी समझते हैं तो हमें सब बातें याद रहती है। अगर पार्टदारी समझा तो ये भी याद रहा कि मेरा घर कौन सा है, मैंने ये पार्ट लिया है और कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहा हूँ, तो आत्मा भी याद रही, परम धाम भी याद रहा, और परम धाम से मैं यहाँ पाठ बजाने के लिए आई हूँ तो मुझे किस प्रकार से पाठ बजाना है ये भी हमारे बुद्धि में याद रहेगा। और अगर ये सब बातें हमें याद रहेंगी तो स्वाभाविक है हम पाठ कैसा बजाएंगे, हम पाठ अच्छा बजाएंगे। और बाबा क्या बोलते हैं कि इस ड्रामा के अंदर तुम बच्चों का हीरो पार्ट है, है हीरो पार्ट, है हीरो पार्ट, कैसे हाँ कोटो में कोई हीरो पार्ट कैसे है जी? हाँ, क्योंकि हमें बाबा ने सिलेक्ट किया है, सर्वशक्तिमान बाप के साथ साथ मेरा पार्ट है, और बड़े ते बड़ी बात के हीरो पार्ट, एक तो बाप के साथ है और साथ होने के कारण फिर आगे में जो हमारा पार्ट है वो भी कितना ऊंचा पार्ट है। कौन सा पार्ट है आगे? हाँ बाबा हम बच्चों को क्या बनाता है? विश्व क्या? विश्व के राज अधिकारी, विश्व महाराजन अथवा विश्व महारानी, इतना ऊंचा पाठ बाबा हम बच्चों को देते हैं। तो बाबा क्या बोलते हैं? विश्व के राज अधिकारी बनने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा? अभी हमें पहले स्वराज्य अधिकारी बनना होगा। तो ये भी हमें निश्चय रहे, ड्रामा के साथ साथ ये भी हमें निश्चय हो कि इस पढ़ाई की जो प्रारब्ध है, बाबा जो हमें भविष्य बताते हैं, उस भविष्य के लिए हमें अभी अपनी तैयारी करनी है। उस तैयारी के अंदर बाबा कहते हैं स्वर राज्य अधिकारी चाहिए। जब जी घूम फिर के फिर आ गया, ये 5000 वर्ष का ड्रामा, सत्युग से हम पहुंच गए संगम पर, द्वापर कलयुग को याद नहीं करना, संगम को याद करना है। अभी हम संगम पर पहुंच गए हैं, और संगम पर होने के कारण फिर अभी नई दुनिया सत्युग आने वाला है, और वो सत्युग बनाने का कार्य, नई दुनिया बनाने का कार्य भी बाबा ने हम बच्चों को दिया है, क्योंकि बाप नई दुनिया रचने वाला है और हम बाप के साथ हैं, हमें बाप ने निमित्त बनाया है नई दुनिया रचने के लिए। तो पहला हमें स्वयं को नया बनाना है। ऐसी बातें जितना हम निश्चय के अंदर, निश्चय माना केवल समझना नहीं, समझ लिया, जान लिया, इतना ही निश्चय नहीं, परंतु जानने के साथ, समझने के साथ साथ हमें उसका पूरा नशा रहे और उसको हम अपने जीवन के कर्मों में लाते रहें। जब हम अपने कर्मों के अंदर उसका प्रमाण, क्या प्रमाण देखे, हाँ हर बात में विजयी, ड्रामा की बात हम देखें कि बरोबर हमारे सामने जो बात आती है उसमें हमें याद आता है कि ये ड्रामा बना हुआ है। चलो ये सीन भी कल पहले हुई थी, अब भी सचमुच याद आता है, साखीपन आता है मेरे को, मैं साखी होके इस बात को देखूं, दृष्टा बना रहता हूं या उसके अंदर उलझ जाता हूं। तो चलो उलझ भी जाएंगे, परंतु फिर जब ये याद आ जाएंगी बात और फिर उसमें साखी हो जाएंगे, तो इसको कहा जाएगा कि निश्चय बुद्धि से हमने विजय पाई। जब विजय पाई, ऐसा 1, 2, 3 बार अगर अभ्यास कर लिया तो फिर ये आपकी आदत बन जाएंगी, अर्थात अपने आप समय पर ये बात याद आती रहेंगी और हर समय हम उसमें विजय का अनुभव करते रहेंगे। जब ऐसे हम विजयी बनते जाते हैं तब हमें वो नशा रहता है, और उस नशे के साथ जब नशा है तो हमारी नेचुरल, हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन होता जाता है। परिवर्तन के आगे, परिवर्तन पहली स्टेज है हमारी, परिवर्तन के आगे फिर हमारी जीवन क्या है, हाँ? पहली स्टेज में जब पहले हमें ज्ञान मिलता है तो हम परिवर्तन करते हैं। समझो हम मनुष्य से जो भी हम संसार के मनुष्य से हम ब्राह्मण बन गए। अब ब्राह्मण ब्राह्मण को देवता बनना है, तो देवता हमारा भविष्य जन्म है, लेकिन इस जन्म में वो दैवी गुण संपन्न बनना है। जो हम इस ब्राह्मण जीवन में दैवी गुण संपन्न बनते, फरिश्ता बने, तब फिर हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, जीवन मुक्त देवता बन सकते हैं। और इस समय में बाबा देवता का अर्थ क्या बताते हैं? हाँ, सत्युग में देवता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और इस समय में हम देवता, हाँ, देवता अर्थात देने वाला। एक तो देवता अर्थात दैवी गुण संपन्न, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला। तो देने वाला अभी हमारी स्टेज बाबा ये चाहते हैं, सुना ना? हाँ, सुनी बाबा की ना कल की मुरली, अभी लेटेस्ट मुरली। तो बाबा अभी हम बच्चों की ये स्टेज चाहते हैं, बच्चे सदा महादानी और वरदानी बने रहो। तो अगर इस समय में महादानी और वरदानी, जो महादानी होगा वरदानी होगा, उसको अपने प्रति कोई इच्छा नहीं रहेगी। रहेंगी इच्छा? हाँ रहेंगी इच्छा, तो हम क्या बन जाएंगे? इच्छा मात्रम अविद्या। जैसे देवताओं की महिमा गाई हुई है ना, देवताएं इच्छा मात्रम अविद्या, उनको कोई इच्छा नहीं उठती। क्यों नहीं उठती? क्योंकि वो संपन्न है, सब कुछ संपन्न है, दैवी गुणों में भी संपन्न है, संपत्ति में भी संपन्न है, जो कुछ जीवन के लिए चाहिए उन सब में संपन्न है। हम संगम पर स्थूल में हमें संपन्नता न भी हो, परंतु अगर अंदर में आत्मा संपन्न है। आत्मा की संपन्नता क्या है? आत्मा की संपन्नता क्या है? आत्मा की संपन्नता है, पहले तो उसमें ये ज्ञान के खजाने भरपूर हो, जिससे हमारी मन और बुद्धि, मन के अंदर शुद्ध संकल्प हो, शुद्धता हो, बुद्धि के अंदर दिव्यता हो, तो हम कहेंगे कि हम संपन्न हैं। जब हमारे अंदर ये ज्ञान के पूरे खजाने, खजाना ज्ञान का खजाना माना, जब हमारा ज्ञान कर्मों में आया हुआ है, जो समझ है, ज्ञान माना समझ, जो समझ बाबा ने हमें दी है, वो समझ हमने जीवन में लाई है। जैसे अभी मुरली में सुना होगा लेटेस्ट, बाबा ने कहा ज्ञान का दान, ज्ञान का प्रयोग, चारों सब्जेक्ट का चार्ट लिखो, बताया ना, जिसमें बाबा ने बताया है कि ज्ञान का पहले अपने पर प्रयोग करो। दान तो देंगे, ज्ञान माना, दान देना माना सिर्फ ज्ञान सुनाते रहो, इतना ही नहीं, ज्ञान सुनाना तो बाबा ने कहा सबको आता है, विस्तार सबके पास है, एक चित्र पर बैठो समझाने तो सारा ज्ञान जितना मिला है समझा देंगे, परंतु ज्ञान को पहले अपने पर प्रयोग करो। अपने पर प्रयोग माना ज्ञान माना समझ, जो समझ हमें मिली है उसको अपने पर प्रयोग। ज्ञान कहता है मेरे में दिव्यता हो, या जैसे आज की मुरली में था, ज्ञान कहता है क्रोध न होना चाहिए, ये मुझे समझ है, क्रोध न होना चाहिए। ज्ञान कहता है अहम भाव न होना चाहिए, ये मुझे समझ है, परंतु ज्ञान मेरे में है, अर्थात इसी समझ को मैंने अपने पे प्रयोग किया, अपने से अहम को छोड़ा, निकाला, तब तो कहेंगे कि मेरे में ज्ञान है अथवा मैं ज्ञानी हूं। तो बाबा ने कहा ज्ञान का पहले खुद पर प्रयोग करो और फिर उसका चार्ट लिखो। तो बाबा अभी हम बच्चों में चाहता है, जितना हम अपने पे प्रयोग करें, अपन को बनाएंगे, तभी हम जो दान करेंगे, चाहे मन से शक्ति का दान, क्योंकि हमारे अंदर वो मनसा की शक्ति भर जाएंगी ना, साइलेंस पावर आ जाएंगी, दिव्यता की पावर आ शक्ति आ जाएंगी तो हम उन्हों का दान करेंगे, मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान दान और कर्म से गुणों का दान। तो बाबा अभी हम बच्चों से हमारा स्वरूप महादानी और वरदानी का चाहता है, इसलिए हम बच्चों को अपने आप अपने से पूछना है, अपने को देखना है, अपने को हम मानते हैं हम बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, तो हम अपने हर कर्म को ये देखें हम निश्चय बुद्धि विजयी बाबा के बच्चे बने हुए हैं। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें हर पल हर सेकंड हर कर्म में विजय प्राप्त करते चलना है, इसको माना जाएगा कि हम बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। ओम शांति। तालियां हम नहीं बजाते हैं क्योंकि ये हम सभा में भाषण नहीं करते हैं, हमारा अपना परिवार है, आपस में बाप से मिला हुआ खजाना लेन देन करते हैं। और दूसरे रीति में कहें कि ईश्वरी विश्वविद्यालय है, विद्यालय के अंदर पढ़ते और पढ़ाते हैं। हम भी ये हम बता रहे हैं जो बाबा से मिला हुआ खजाना है, हमारी ये भी पढ़ाई है, ये हम पढ़ाते नहीं है परंतु ये भी हमारी पढ़ाई है। तो पढ़ाई के अंदर क्योंकि ऐसे नहीं, वो तो सभा में भाषण करते हैं तो वो समझते हैं भाई तालियां बजाई सबको अच्छा लगा, इसलिए उन्हों को भी खुशी होती है, सुनाने वालों को भी भाषण करने वालों को भी खुशी होती है भैया सब मेरे भाषण से खुश हुए। लेकिन अपने को ये बातें नहीं है, अपन तो आपस में बाप से मिला हुआ खजाना आपस में लेन देन करके एक दो को आगे बढ़ाते रहें अथवा पढ़ाई पढ़ते रहें और पढ़ते आगे बढ़ते जाएं। इसलिए क्लासेस के समय तालियों की आवश्यकता नहीं रहती, भले ये एक थोड़ी थोड़ी रस्म पड़ गई है, ये खुशी भी है, लेकिन फिर भी जितना जितना दुनिया के रस्मों से हम दूर रहें उतना अच्छा है। अभी हम इसी निश्चय बुद्धि विजयंती बन करके उस नशे में बाप के महानताओं को याद करते हुए, बाप जो हम बच्चों से चाहते हैं, बच्चे सदा महादानी वरदानी देवता देने वाले, ऐसी ऊंची स्टेज पर हम अभी बाप की याद में बैठे हुए अपनी इतनी ऊंची स्टेज बना के रखें जो हम उस नशे में उस खुशी में बैठे रहें। ओम शांति।